ने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी, मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह, आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी।
ओम शांति। गीत में हम सुन रहे थे भगवान हम पर मेहरबान हुआ है। लगता है आपको ऐसा? लगता है भगवान मेहरबान, और मेहरबान होकर क्या क्या दे रहा है? भगवान जब मेहरबान हो जाए तो जो कुछ उसके पास है वो सभी दे देता है, और यही अब हुआ है कि जो उसके पास है वो सब कुछ हमें दे देता है, और हम सब जो लेने वाले हैं हम उसमें से कितना लेते हैं? हमारे पास लेने की क्षमता, लेने का पात्र, बर्तन कितना बड़ा है, इस पे सब कुछ निर्भर करता है। देने वाले ने हमारे सामने सब कुछ रख दिया कि जो चाहे ले लो। हम एक सीन बना लें अपने सामने कि स्वयं भगवान हमारे सामने नीचे उतर आया, अपने सब खजाने हमारे सामने रख दिए और कहा जितने चाहे उठा लो, इनमें से कौन कितना उठाएगा ये उठाने वाले पर है, कौन कितना संभाल सकता है वो संभालने वाले पर है, किसकी बुद्धि कितनी रिफाइन है, कितना ग्रहण कर सकती है वो उस पर है। बाबा हम सभी को सारे खजाने सूक्ष्म रूप में देते हैं। ध्यान से सुने आप इस बात को, ज्ञान खजाना सूक्ष्म है, बुद्धि में आता है। जो आत्मा जितना ज्ञान खजाना अपनी बुद्धि में भर ले चारों युगों में, उसके पास उतने ही स्थूल खजाने रहेंगे। बीज डल रहा है ये। दूसरा खजाना हमें बाबा देता है सर्व शक्तियों का, सूक्ष्म खजाना है। इस खजाने से हम यहाँ शक्तिशाली बनते हैं, और जो आत्मा इस समय जितने खजाने अपनी बुद्धि में, जितनी शक्तियां अपनी बुद्धि में धारण कर ले चारों युग, उतनी ही शक्तिशाली बनकर वो राजभाग संभालती है। क्योंकि जो संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली आत्माएं हैं वही राज संभालती हैं। केवल बुद्धिमान नहीं, शक्तिशाली आत्माओं को राजा ही प्राप्त होती है। ऐसे ही गुणों के खजाने बाबा हम सबको दे रहा है, बुद्धि उसको धारण करती है। जिस आत्मा ने जितने गुणों के खजाने अपनी बुद्धि में भर लिए, जन्म जन्म उसका जीवन उतना ही सुखी, शांतमय, संपन्न, अनेक गुणों से भरपूर रहता है। तो बाबा हम सभी को समान रूप से सब कुछ दे रहा है। हमारे ऊपर है कितना उठा ले, कितना ग्रहण कर ले, और ग्रहण किसमें होता है? ग्रहण कौन करती है? आत्मा तो करती है, और जरा बताओ, ग्रहण करती है बुद्धि। बुद्धि ही बाबा कहा करते हैं आत्मा का मुख्यमंत्री भी है, कंट्रोलर है बुद्धि। बुद्धि की ग्रहण शक्ति यदि हमें बढ़ानी हो तो क्या चाहिए? बुद्धि में ज्ञान मिल रहा है, विवेक भर रहा है, परंतु बुद्धि की शक्ति तब बढ़ती है, बुद्धि की क्षमता, उसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी तब बढ़ती है जब हमारा मन पूरी तरह शांत रहता हो। उसमें भी दो चीज से शांत मुक्त, एक व्यर्थ और दूसरा निगेटिव, जो बाबा सदा ही मुरली में बोलते हैं, व्यर्थ संकल्प से मन जितना मुक्त है बुद्धि उतनी ही श्रेष्ठ है। तो ये हमारे ऊपर है कि इस समय जब स्वयं भगवान से हमें भाग्य मिल रहा है, हम अपनी बुद्धि को कितना रिफाइन बनाते हैं, डिवाइन बनाते हैं, दिव्य बनाते हैं, और उसकी ग्रहण शक्ति को कितना बढ़ा लेते हैं। जो बुद्धिमान हैं, उन्हें अवश्य ही अपने से बात करनी चाहिए। सब बुद्धिमान बाबा के बच्चे बैठे हैं, सब अपने से बात करें। क्या करें? संगम युग पर हम सभी को न केवल भगवान मिले हैं, वो तो कल सभी ने सम्मुख देखा, जो पहली बार आए उनको आज बहुत खुशी रही होगी, सबको ही रही होगी, पर पहली बार वालों को ज्यादा होती है। भगवान मिलने के साथ साथ हमें श्रेष्ठ अवसर मिला है। सोच लें सभी अच्छी तरह, दुनिया में भी कहा जाता है अवसर मनुष्य के पास बार बार नहीं आते, एक साल में भी, एक दिन में भी अवसर आते हैं, जीवन में अवसर आते हैं, और इस जीवन में प्राप्त अवसर सर्वश्रेष्ठ हैं। अवसर मिला है जन्म जन्म का भाग्य बनाने का। जैसा चाहे बीज बोलें, जन्म जन्म कुछ भी मांगना न पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, भटकना न पड़े, परेशानी न हो, टेंशन न हो, हार न हो, विजय ही विजय हो। हर जन्म के लिए ऐसा बीज डालने का अवसर मिला है। अवसर भाग्यवान आत्माओं को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना? सब भाग्यवान बैठे हैं यहाँ, इससे भी बड़ा शब्द हो पद्मा पदम भाग्यवान बाबा कहते हैं, उससे भी बड़ा कुछ हो तो वो सब भाग्य हम सबको प्राप्त है। अवसर बार बार नहीं आते, इस जन्म में अब मिला है, कितना समय हमारे पास ये अवसर रहेगा ये हमें पता नहीं, कब बुलावा आ जाए, कब किसका टर्न आ जाए वापस चलने का, कब किसके शरीर का अंत हो जाए, किसी को पता नहीं है। तो बुद्धिमान वो जो समय का संपूर्ण फायदा उठाएं। विचार करें आप, बात करें अपने से, इतना श्रेष्ठ अवसर जब हमारे हाथ में है तो हम क्या करें? सेवा हम सब करते हैं, बाबा ने कल भी दो काम हमें दिए, एक अपनी सेवा सर्व समर्पण और एक लोक सेवा, सदा ही ये काम हमें मिलते आए हैं, पहली बार तो नहीं दिए हैं बाबा ने, माइक तैयार करो, परंतु साथ में लास्ट लाइन मुरली में ये आ गई, आपने सबने ध्यान दी होगी, इस सीजन की मुरलियों में बार बार आई है, शक्तियों की सकास दो, शक्तियों से सबकी पालना करो। ज्ञान देने वाले बहुत हैं, हम में से भी सभी बाबा के बच्चे ज्ञान देते हैं, जो सकास दे सकते हो जो दूसरों को अच्छे वाइब्रेशंस दे सकते हो उन्हें वही काम करना चाहिए। तो बहुत अच्छा अवसर हमें मिला है अपनी बुद्धि को रिफाइन दिव्य बनाने के लिए। हमें जरूरत होती है अच्छे योग की। हमारी सभा में कल परसों से बाबा ने भी हाथ उठवाया, हम देखते आए कि 50% से अधिक भाई बहने नए हैं। हम आपके सामने आज योग को सहज कैसे किया जा सकता है, इसको कर्म में कैसे लाया जाए, इसके बारे में कुछ बातें रख देते हैं। योग हम सबका ऐसा विषय है जिसमें कोई नए हो या पुराने, सभी को समान रूप से मेहनत करनी पड़ती है। जीवन में आने वाली छोटी मोटी बाधाएं और समस्याएं मनुष्य के बुद्धि योग को विचलित कर देती हैं। कलयुग के इस अंतिम माहौल में बुद्धि को एकाग्र रखना, अगर मैं ये कहूं कि सहज काम नहीं है, भले ही बाबा के शब्दों में सब कुछ सहज है, बाबा तो सहज ही करता है, परंतु कलयुग के इस माहौल में जहां हमारी बुद्धि को खींचने वाली चारों ओर अनेक बातें हैं, जहां हमारे सभी जन्म जन्म के कर्म हमारे सामने हैं, समस्याएं हैं, तनाव है, हर घर घर में ऐसी स्थिति है कि मनुष्य चाहते हुए भी योगयुक्त नहीं हो पाता, ऐसे में हम क्या क्या अपनाएं जो हमारा योग बहुत अच्छा हो जाए, हमारी एकाग्रता बढ़ जाए और हमें संतुष्टि हो कि हम इस जीवन में बाबा से अनमोल खजाने प्राप्त कर रहे हैं। जिनका योग अच्छा होता है उन्हें ये अनुभूति होती है कि बाबा से बहुत कुछ मिल रहा है। योग अच्छा नहीं, समस्याएं बढ़ती जाती हैं और बाबा के मिलने का सुख फीका पड़ता जाता है। तो सभी ये तो चाहते ही हैं कि हमारा जीवन योगयुक्त हो जाए, चाहते हैं ना सभी, पूछने की बात तो नहीं है, फिर भी चाहती हैं सभी बहने। अगर हमारा जीवन योगयुक्त नहीं होता तो क्या होता है, आने वाले समय में क्या होगा। बाबा ने एक छोटा सा बहुत सुंदर सिद्धांत हम सबको बताया हुआ है, जैसी स्वस्थिति वैसी ही परिस्थिति। अगर योग अच्छा नहीं तो स्वस्थिति बिगड़ती जाती है और परिस्थितियां बढ़ती जाती हैं, और अगर योग श्रेष्ठ है तो स्वस्थिति बढ़ती जाएगी, परिस्थितियां घटती जाएंगी। इसको जीवन में रोज अनुभव किया जा सकता है। सीधा संबंध है, परिस्थितियों से मनुष्य घिरता जाए तो उसे चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने को डिटैच करके दो चार दिन भी अपने योग को अच्छा कर ले तो सारी परिस्थितियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो कैसे हम योग करें, क्योंकि हम सभी जो क्लास सुनते हैं, करते कराते हैं, तो योग पर चर्चाएं काफी कम होती हैं, इसलिए योग का विषय ज्ञान की दृष्टि से भी इनकम्प्लीट रह जाता है। हमसे बहुत भाई बहने बात करते हैं तो पता चलता है कि सबसे बड़ी कमजोरी योग की है, और बहुतों के पास योग का ज्ञान भी क्लियर नहीं है, क्योंकि योग एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतना गहरा है। आप सब जानते होंगे हजारों साल से इस विषय पर लोगों ने खोजे की, अनेक विधि विधान बनाए, साधनाओं के तरीके बनाए, फिर भी योग तो हुआ नहीं। जब बाबा आया उसने सहज राजयोग हमें सिखा दिया, तब हमारा संबंध सर्वशक्तिवान से अच्छी तरह हो जाए तो कुछ छोटी छोटी बातें जानना और उनका अभ्यास करना आवश्यक है। सबसे पहली और छोटी सी बात, अपने को आत्मा समझो। सब जानते हैं, रोज सुनते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट जान लेना है। और इसकी सहज स्पष्टता यही है कि हमें ये महसूस करना है कि मैं आत्मा इस तन से अलग हूं। केवल ये सोच लेना कि मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, इसे कुछ नहीं होगा। मैं आत्मा इस देह से अलग हूं। अपने को याद दिलाएं कि ये शरीर जो मुझे दिख रहा है, मैं इसकी मालिक हूं। और बार बार याद दिलाना पड़े, केवल योग में बैठने के समय नहीं, इसको आप कर्म में आदत डाल लें। दिन में अनेक बार अपने को याद दिलाएं कि तुम ये नहीं हो, तुम इसके मालिक हो। एक बात। दूसरी चीज, इस बात का विशेष ध्यान देना है कि योग अभ्यास में यदि हमें देह से न्यारापन नहीं आता तो योग नहीं, सफल भी नहीं, संकल्प शांत भी नहीं होंगे। एक बहुत अच्छा संकल्प इसके लिए बाबा देते हैं, और वो संकल्प हमें तुरंत देह से न्यारेपन की फीलिंग कराता है कि मैं आत्मा इस देह में आई हूं। अपने से बात करते रहें। क्या बात करेंगे यहां? कि इस शरीर से पहले मैं एक और शरीर में थी, उससे पहले एक और शरीर में, कभी मेल शरीर में, कभी फीमेल शरीर में, इसके बाद एक और शरीर में जाऊंगी। आत्मा शरीर बदलती आई है, इसको ले आए अपने सामने। भले ही हमें पता नहीं है कि इससे पहले हमारे कौन कौन से शरीर थे, पर यह तो हमें पता है कि शरीर थे। आगे भी हम देव शरीरों में रहेंगे, तो मैं आत्मा शरीर बदलती आ रही हूं। इसको बाबा रोज मुरलियों में कहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। और आप सबने सुना है कि बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी बनोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यह है स्वदर्शन चक्र, कि हम ये महसूस करने लगे कभी मैं इस शरीर में हूं तो कभी इसमें हूं। और अगर ये हम अभ्यास करते रहेंगे तो ये बिल्कुल सत्य है और संभव है कि हमें अपने अनेक जन्मों का आभास होता जाएगा। हमारे सामने हमारे अनेक जन्म स्पष्ट होंगे। बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, यज्ञ के प्रारंभ में ही उनके अनेक जन्म स्पष्ट हो गए थे, जिसमें बाबा ने देखा था कि कभी मैं पगड़ी वाला हूं, कभी ताज वाला हूं, कभी साधारण हूं। हीरो एक्टर थे वो, चक्र के सबसे बड़े हीरो एक्टर, तो उनके अनेक जन्म राजाई में गुजरे हैं। ये बाबा को पहले दिनों में ही स्पष्ट आभास, साक्षात्कार जैसा हो गया था। हमें भी हो जाएगा यदि हम इस तरह स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो। और आगे चलें, बहुत सुंदर अभ्यास जिसमें हमें बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करना है, स्वयं के स्वरूप को देखना। बुद्धि थर्ड आई है, तीसरा नेत्र है, तीसरे नेत्र की तरह हमारी बुद्धि काम करती है। केवल निर्णय शक्ति ही नहीं है बुद्धि, बुद्धि निर्णय शक्ति से पहले विवेक शक्ति है। इसमें विवेक भरा है, विवेक के आधार पर हमारी बुद्धि निर्णय करती है। तीसरा नेत्र है ये बुद्धि, इससे हम देखते हैं आत्मा के स्वरूप को। जो जितना स्पष्ट देखें अपना स्वरूप और फिर बाबा का, उतने ही अच्छे योगी बन जाएंगे। आप अपने स्वरूप को देखो, अभी देखो, मैं आत्मा, भ्रकुटि सिंहासन पर विराजमान राजा, मुझसे चारों ओर शक्तियों की, शांति की, पवित्रता की किरणें फैलती हैं, अनंत किरणें, छोटा सा ज्योति बिंदु नहीं, ऐसा बिंदु जिससे अनंत किरणें फैलती हैं। अपने स्वरूप पर अपनी बुद्धि को एकाग्र किया करें, शुरू करें 5 सेकंड से, 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये अभ्यास बढ़ाएं, और योग न करके केवल ये अभ्यास बढ़ाएं कि अपनी बुद्धि को अपने ही स्वरूप पर हम कितनी देर स्थिर कर सकते हैं। खींचातान की जरूरत नहीं, 5 सेकंड से शुरू करेंगे, कुछ दिन 5 सेकंड अनेक बार कर लें, फिर कुछ दिन 10 सेकंड, फिर 30, और 30 सेकंड जब आपकी एकाग्रता हो जाए तो 1 मिनट बहुत जल्दी हो जाएगी और उसके आगे बढ़ जाएगी। क्लियर है ना ये बात सभी को? तो जैसे ही हमारी बुद्धि हमारे स्वरूप पर एकाग्र होगी, हमारा मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। ये बात हमें याद रखनी है कि हमारा मन फॉलो करता है हमारी बुद्धि को, बुद्धि प्रभाव डालती है हमारे मन पर, बुद्धि हायर है, शक्तिशाली है, मन से, मन को कंट्रोल करने के लिए जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, बुद्धि के विवेक के द्वारा हम अपने मन को सहज ही कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी दिशा बदल सकते हैं, उसमें अच्छे संकल्प पैदा कर सकते हैं। तो ये अभ्यास करेंगे, ये है अपने को आत्मा समझना। और भी इस बारे में बहुत बातें हो सकती हैं, तो धीरे धीरे चलते फिरते आप ये अभ्यास करते रहें कि मैं आत्मा यहां बैठकर इस देह को चला रही हूं। आप देख सकते हैं रोज के अनुभवों में, आत्मा ही तो शरीर को चलाती है। ज्ञान तो हम सबको है, पर देखिए कैसे चलाती है, मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा चलाती है। अभी आपको संकल्प आ जाए कि उठ के बाहर चलूं, आप उठ जाएंगे ना। मन का ऑर्डर मानता है हमारा शरीर। बाहर जाकर आपको संकल्प हो जाए कि जरा तेज चलूं, जल्दी जाना है, तो आपके कदम तेज चलेंगे, मन के ऑर्डर को तुरंत मान लिया पैरों ने। कहीं आपको इच्छा हो कि खड़ा हो जाऊं, संकल्प होगा, पैर रुक जाएंगे। हमारी संकल्प शक्ति ही तो हमारे शरीर को कंट्रोल कर रही है ना, हम रोज हर पल इस बात को देख रहे हैं। संकल्प शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है, इसको जो आत्मा कंट्रोल कर ले, ये सत्य है कि उसमें प्रकृति को और संपूर्ण संसार को कंट्रोल करने की शक्ति आ जाती है। तो हम ये अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा यहां बैठकर शरीर को कंट्रोल कर रही हूं। खेल करने लगे आप बच्चों की तरह, मैं यहां बैठ के ऑर्डर देता हूं पैरों को, तेज चलो, क्योंकि हमें पता नहीं चलता हम कब ऑर्डर दे देते हैं, हमें उसकी अवेयरनेस नहीं रहती, हम सोच लेते हैं, हमें पता नहीं चलता। पर आप प्रैक्टिकल करने लगे कि मैं आत्मा, मन, ऑर्डर करो कि तेज चलो, दौड़ो, रुक जाओ, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये इस तरह हम स्वयं को देह से न्यारेपन की ओर ले चलें, इसको ही कहते हैं अशरीरीपन। ये अभ्यास करते करते हम इस शरीर में रहते हुए भी विदेही हो जाते हैं। विदेही अर्थात देह में रहते हुए देह के प्रभाव से मुक्त, कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से मुक्त, संसार में रहते हुए संसार के प्रभाव से निर्लिप्त। और ये अभ्यास करते करते आत्मा अपनी मूल निराकारी स्थिति को प्राप्त कर लेती है। उसके बाद देह छूट जाता है, हम वापिस चले जाते हैं। तो इस तरह सबसे पहले आत्मा होने का अभ्यास करना है। और जोड़ दें इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें, मैं आत्मा हूं इसी के संबंध में दो बातें और। एक ये कि हम मैं आत्मा हूं इसके साथ यह अभ्यास भी करें कि मैं कौन सी आत्मा हूं, स्वमान जिसे कहते हैं। मैं एक महान आत्मा हूं, हीरो एक्टर हूं, विजयी रतन हूं, या प्रकृति की मालिक हूं। ये बहुत सारे स्वमान बाबा ने हम सबको रोज याद दिलाए हैं। मैं आत्मा हूं इसके साथ एक एक एडजेक्टिव जोड़ दें आप, एक एक गुण उसका जोड़ दें, मैं आत्मा कैसी हूं, इससे नशा चढ़ेगा। कई पूछते हैं कि हम तो ये सोचते रहते हैं मैं एक महान आत्मा हूं लेकिन हमें नशा नहीं चढ़ता, क्या कारण है? हम तो सोचते रहते हैं मैं शिव शक्ति हूं, शक्ति आती ही नहीं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, शक्तियों के मालिकपन का अनुभव नहीं होता। कारण है चिंतन की कमी। बाबा उदाहरण देकर आए हैं मुरलियों में कि शराब आपकी अलमारी में रखी हो, थोड़ा ही नशा चढ़ेगा उसको देख के, पीना पड़ेगा ना। ऐसे ही ज्ञान चिंतन से नशा चढ़ता है। स्वमान की बातों को चिंतन में लाएंगे बार बार, उसके बाद अनुभव होगा कि संकल्प किया और नशा चढ़ गया, फिर चिंतन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रारंभिक दिनों में चिंतन की आवश्यकता है। और यह भी याद रखना चाहिए इसमें तीन स्थितियां हैं। पहला है नशा, ईश्वरीय नशा, दूसरा है स्वमान, और तीसरी है श्रेष्ठ स्मृतियां। नशा हमें हो जाए, पहला नशा है हमें कौन मिला, कौन पढ़ाने आता है, उससे क्या क्या मिला, ये सब नशे हैं। स्वमान मैं कौन, और स्वमान का अभ्यास करते करते आत्मा को स्मृति आ जाती है तुम कौन हो, स्मृति स्वरूप हो जाती है आत्मा। और तब अनुभव होगा कि जो बाबा हमें कहते हैं वो हमारे लिए वरदान बन जाते हैं। इसमें बाबा का ये बहुत सुंदर महावाक्य है कि जो आत्माएं लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं उनकी बुद्धि में वरदानों को धारण करने की शक्ति आ जाती है। बाबा के महावाक्य हमारे लिए वरदान बन जाते हैं। किसी को बाबा कह देते हैं तुम विजय रतन हो, उसको बाहर जाके फील होता है कि मैं विजय रतन हो ही नहीं, बार बार हार होती है। भगवान ने कह दिया तुम विजय रतन हो, शायद झूठ बोल दिया, मेरी तो विजय हो नहीं रही। लेकिन अगर लंबा समय आत्मा नशे में रही है तो बाबा के मुख से निकलते ही कि तुम विजय रतन हो, आत्मा को विजय का वरदान मिल जाएगा, और बाहर निकलते ही हर कदम पर विजय की अनुभूति होगी। तो हम आत्मा है, इसका सुंदर स्वरूप है स्वमान की स्थिति। दिन में कई बार स्वमान को अपनी फीलिंग्स में, चिंतन में लाना चाहिए, इससे मन और शांत हो जाएगा, शांत के साथ मन आनंदित होगा। मैं आत्मा देह से न्यारी हूं, इससे शांति का अनुभव सबसे ज्यादा होगा, पर स्वमान के अभ्यास के द्वारा शांति के साथ खुशी और आनंद से भी आत्मा संपन्न हो जाएगी। तीसरा स्वरूप जिस पर हम सबको बहुत ध्यान देना है और थोड़ी सी ही समझ लेने की बात है मुरलियों में, क्योंकि बहुत आत्मनिर्भरी हूं, इससे शांति का अनुभव सबसे ज्यादा होगा, पर स्वमान के अभ्यास के द्वारा शांति के साथ खुशी और आनंद से भी आत्मा संपन्न हो जाएगी। तीसरा स्वरूप जिस पर हम सबको बहुत ध्यान देना है और थोड़ी सी ही समझ लेने की बात है मुरलियों में, क्योंकि बहुत आती है ये बात, नए भी जब सुनते हैं तो उनको स्पष्ट नहीं होता कि फरिश्ता बनना क्या है, फरिश्ता स्वरूप क्या है। वास्तव में आत्मा जब से परमधाम से नीचे देह में आई तो वो सदा ही सूक्ष्म शरीर के साथ है। केवल परमधाम में ही आत्मा निराकार है। वहां से नीचे आते ही पहले ही दिन जब नीचे उतरी तो उसको सूक्ष्म शरीर मिला, कल्प से निर्मित होता है। हम सदा ही सोचने लगे इस शरीर में आते ही हमारे संकल्प वाइब्रेशंस बनकर, लाइट बनकर, एनर्जी बनकर इस शरीर में फैलने लगे और ऐसे ही शरीर का निर्माण करने लगे। तो सूक्ष्म शरीर ठीक ऐसा ही होता है जैसा स्थूल शरीर। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर को लेके बाहर जाती है। अब आप एक चित्र अपने सामने लाओ कि पिछले जन्म में हमने जब शरीर छोड़ा था तो हम अपने सूक्ष्म शरीर सहित बाहर निकले थे, और कोई अगर हमें उस सूक्ष्म शरीर में देखे तो वो पहचान लेगा ये किसका स्वरूप है। उसके फीचर्स, उसका चेहरा, नाक, कान, आंख, हाथ सब वैसे ही होते हैं जैसे स्थूल शरीर में। तो आत्मा सूक्ष्म शरीर में बैठी है, ये है फरिश्ता स्वरूप। हम आत्मा के संबंध में ये अभ्यास भी करें कि मैं इस शरीर में फरिश्ता हूं, मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में बैठी हूं। देखने लगे, स्पष्ट अभ्यास करने लगे कि मैं आत्मा इस सूक्ष्म शरीर को छोड़ ऊपर की ओर चलती हूं, चाहे किसी को ये कल्पना ही लगे पहले, कोई बात नहीं, आप कल्पना समझकर इसका अभ्यास कर लेना, क्योंकि वास्तव में कल्पना है नहीं, कल्पना और इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन, सत्य को देखना, इन दोनों में अंतर होता है। तो अभ्यास करें आप, मैं फरिश्ता इस देह से धीरे धीरे निकलकर ऊपर की ओर जाता हूं, सूक्ष्म वतन में बाबा को देखकर वापस आ जाता हूं, इसमें प्रवेश कर लेता हूं। योग में बैठें तो 5-7 बार ये अभ्यास कर लें, देखें क्या अनुभव होता है। कल्पना और विजुअलाइजेशन, इंग्लिश वाले समझते हैं इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन, कल्पना और सत्य बात को देखना, इसमें क्या अंतर है। क्योंकि कोई कोई कह देते हैं कि परम धाम में शिव बाबा है, ये तो आपकी कल्पना है। अब आसमान में सूरज चमक रहा है, हम इस हॉल में बैठे हैं, हमें सूरज नहीं दिख रहा है, आंखों से नहीं दिख रहा है, हमें पता है कि सूरज इधर है, अब नीचे की ओर जा रहा है, हम यहां बैठे बुद्धि से उसको देख सकते हैं ना, इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन, देखना। इसको कल्पना नहीं कहेंगे, क्योंकि सूरज का होना सत्य है और हम उसे बुद्धि से देख रहे हैं। हम कल्पना कर लें, रात को सोच लें कि सूरज आसमान में चमक रहा है इधर, तो क्योंकि वो चमक नहीं रहा, इसको कल्पना कहते हैं। जो चीज है उस पर बुद्धि को स्थिर करना विजुअलाइजेशन है, सत्य है। जो चीज नहीं है उसके बारे में सोचना कल्पना है। तो मैं फरिश्ता हूं ये कल्पना नहीं है, ये सत्य है, पर क्योंकि ये हमें दिखता नहीं इसलिए मैंने आपको कहा कि यदि आप इसे थोड़ी देर के लिए कल्पना समझकर भी अभ्यास करेंगे तो ये कल्पना सत्य हो जाएगी। साइंस वाले जानते हैं कि बहुत सारी खोज वैज्ञानिकों ने कल्पना से ही तो शुरू की थी, हाइपोथेसिस जिसे कहते हैं, मान लो ये है और उसके बारे में खोजे हुई और सत्य तक वैज्ञानिक पहुंच गए। अब बाबा से कनेक्शन जोड़ना, दो स्वरूप हम ले लें इसके बारे में मोटे रूप से। एक जो बाबा की मुरलियों में रोज रोज आया है, मेरा बाबा, सिंपल शब्द हैं पर गहनता को अपने में समाये हुए, मेरा बाबा, बाबा मेरा, भगवान मेरा। जो भगवान है वो अब मेरा है, इसको भी अपने चिंतन में लाएं, नहीं तो फिर वही बात होती है कि लोग कहते हैं, हम तो बार बार कहते हैं मेरा बाबा, कुछ तो होता नहीं, खुशी भी नहीं होती। और बाबा इतना जोर देते हैं कि मेरा बाबा कहो, और माताओं कहते हैं डांस करो, और माताएं कहती हैं हम तो रोते भी रहते और मेरा बाबा भी कहते रहते हैं, दोनों साथ साथ चलता रहता है, तो होता नहीं कुछ। चिंतन में लाओ कि जिसको आज तक हम ढूंढते थे, जिसके लिए अनेक कल्पनाएं किया करते थे, जिसके बारे में सारे संसार में हजारों ग्रंथ और शास्त्र लिखे गए, तो भी जिसको संसार का कोई विद्वान ऋषि मुनि जान नहीं पाया, वो जब हमारे पास आया तो उसने कहा, बच्चे मैं तो तुम्हारा हूं, तुम क्या सोच रहे हो, तुम आज तक डरते रहे मेरे से कि भगवान पता नहीं कैसे होगा। अगर किसी ने कह दिया भगवान के पास जाना है तो घबरा गए कि बिना मरे तो वहां जाएंगे नहीं, पर मैं तो तुम्हारा हूं, इस फीलिंग को बढ़ाना है। ये सबसे सुंदर योग है, फीलिंग। जैसे लौकिक संबंधों में किसी संबंध को देखते ही हमें नेचुरल फीलिंग है ना, ये हमारे हैं। एक मां की कहानी, एक मां सुनाया करती है कि सब बच्चे स्कूल के जा रहे थे, वो देख रही थी उनमें से कौन सा मेरा आएगा, उसका बच्चा पढ़ता था, जैसे उसका बच्चा गुजरा तो उसका नैन चैन सब खिल गया, मेरा ये आ जाओ बुला लिया। बाकी सब भी बच्चे जा रहे थे, सब जानते हैं अपनेपन की फीलिंग कैसी होती है, जिसको छोड़ा नहीं जा रहा है आज तक, बाबा मेहनत करा रहे हैं कि छोड़ दो इसे, तो भी हम छोड़ नहीं पा रहे, वो मेरापन। कैसी सुंदर बात है हमारे परिवारों को जो संगठित रखता है, भगवान मेरा, सर्वशक्तिवान मेरा है। सोचने लगो, जिसका नाम सुन के ही लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जिसको याद करके ही भक्तों को शांति मिल जाती है, वो मेरा है। और उसने कह दिया कि बच्चे मेरा सब कुछ तुम्हारा। तो इस फीलिंग को जीवन में बढ़ाते चलें, ये बहुत सुंदर फीलिंग है। भगवान मेरा, जब भी समस्या आए तो मनुष्यों को याद करने की बजाय उसे ही याद करो जो मेरा है, तो तुरंत अनुभव होने लगेगा कि सत्य है कि जिसका साथी भगवान हो, जिसको भगवान साथ दे रहा हो। कल बाबा ने कहा हजार भुजाएं क्या हैं, छत्र छाया है तुम्हारे सिर पर, भगवान स्वयं कह रहा हो, उन्हें भला क्या सोचने की जरूरत है, हो सकती है कहीं चिंता और डर। आप सब बाबा की मुरलियों से सुनते हैं कि बाबा के लिए ये विनाश, ये भूकंप क्या है? महाकाल के लिए कुछ भी नहीं, उसे तो लगता है मेरे बच्चे आत्माएं मेरे पास आ गई, क्या हुआ इसमें, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, लगता है ना उसे। पिछली बार भी ऐसे ही कहा तो कुछ भी नहीं हुआ, कल भी कहा तो कुछ भी नहीं है, अभी तो होना है बहुत कुछ। तो मेरा है वो इस फीलिंग को अच्छी तरह बढ़ाते चले, लेकिन ये बात याद रहे कि ये फीलिंग चिंतन से बढ़ेगी, केवल शब्दों से नहीं। इतनी समीपता, ऐसा गहरा संबंध, ऐसा अपनापन हमारे अंदर हो जाए तो बहुत सारी बातें जीवन की स्वतः ही समाप्त। दूसरा अभ्यास, जैसे हमने स्वयं को आत्मा देखने का अभ्यास किया, वैसे ही शिव बाबा को देखने का अभ्यास। बाबा के बहुत अच्छे अच्छे महावाक्य इस संबंध में मुरलियों में आ गए कि जैसे सूरज की किरणें यदि चेहरे पर पड़े तो सूरज की गर्मी, उसकी लाइट आ जाती है ना अपने अंदर, वैसे ही ज्ञान सूर्य की किरणें यदि तुम्हारे ऊपर पड़ने लगे तो ज्ञान सूर्य के सभी गुण और शक्तियां तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। तो हम अभ्यास किया करें। शिव बाबा के लिए ये शब्द बहुत सुंदर है कि वो ज्ञान सूर्य है, कि उसकी किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं, मुख उसकी ओर कर दो, बुद्धि उसकी ओर कर दें, बुद्धि उसके इस स्वरूप पर स्थिर कर दें कि वो ज्ञान सूर्य है। फिर से यही अभ्यास अच्छी तरह बढ़ाएं, अलग से 5 सेकंड के लिए, फिर 10, 20, 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, जैसे हम केवल ज्ञान सूर्य को ही देख रहे हैं और कुछ नहीं, उसकी किरणों के अलावा और कुछ नहीं, हमारी बुद्धि संपूर्ण रूप से उसके स्वरूप पर स्थिर। ये है सर्वश्रेष्ठ और अति सुंदर योग। बाबा से कुछ मांगने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप सब इस बात को जानते होंगे। ये भी बार बार सोचने की आवश्यकता नहीं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं या प्रेम स्वरूप हूं या शक्ति स्वरूप हूं, ये तो पहले लेसन है हमारे, पहली दूसरी क्लास के। अब इसको छोड़कर देह से न्यारा स्वयं को महसूस कर लें और इससे आगे बढ़कर मैं आत्मा भी मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य, जिसकी तेजस्वी किरणें सारे संसार तक फैल रही हैं, और वो ज्ञान सूर्य, शक्तियों का सूर्य, पवित्रता का सूर्य, उसकी किरणें हम पर पड़ रही हैं, तो उसको देखने का अभ्यास बढ़ाएं। क्लियर है ना ये बात? रही छोटी छोटी बातें कि परम धाम में योग लगाएं या सूक्ष्म वतन में, पहले सूक्ष्म वतन में जाएं फिर परम धाम में जाएं, या पहले परम धाम में जाके नीचे सूक्ष्म वतन में आएं, ये कुछ प्रश्न लोगों को कंफ्यूज करते हैं। इन प्रश्नों का कोई महत्व नहीं। यदि आपको सीधा परम धाम में जाकर आनंद आता है तो फर्स्ट क्लास, इसकी जरूरत नहीं कि वाया सूक्ष्म वतन ही ऊपर जाएंगे, सीधे कैसे चले गए, ऐसी कोई बात नहीं। यदि आप पहले सूक्ष्म वतन में जाके परम धाम में जाते हैं, ये भी बहुत श्रेष्ठ, कोई गलती नहीं। कोई कहते हैं ब्रह्मा के तन में बाबा को याद करें या सीधा परम धाम में याद करें, मुरलियों में साकार में बातें आई हैं। साकार मुरलियों के बारे में आप सबको एक चीज स्पष्ट हो कि बाबा के सामने जिस तरह के बच्चे बैठे होते थे उसी तरह के महावाक्य उच्चारित होते थे। उदाहरण, कभी कुछ ऐसे बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं जो शिव बाबा को तो पूरा मान देते हैं पर कहते हैं ब्रह्मा की जरूरत नहीं, तो तो बाबा की मुरली चलती थी कि इसके बिना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। शिव बाबा को याद कर लो घर में बैठ के, सुन लो मुरली घर में। कभी ऐसे बच्चे आ जाते थे जो जरा भक्त क्वालिटी होते थे कि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आया है, यही सब कुछ है, शिव बाबा को छोड़ो। तो मुरली चलती थी कि इसे याद ना करो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डबल बात बाबा कह रहा है। भगवान भी गड़बड़ करता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। विरोधाभास क्यों है भगवान के महावाक्यों में, ये जानना चाहिए। हम सब भी तो ये करते हैं ना। जैसा व्यक्ति समझने वाला हमारे सामने आ गया, उस अनुसार हम बात करते हैं ना। मेरे को बहुत लोग कहते हैं हम अपना पार्ट बदलना चाहते हैं, ये ड्रामा फिक्स है, इस बात ने तो हमें परेशान कर दिया है, हम इसे बदलना चाहते हैं। अगले कल्प में शिव बाबा हमारे तन में आए, हम ये चाहते हैं। ऐसे भी कुछ महापुरुष मिले तो मेरे को कहा ये संभव नहीं है क्या? ऐसी स्थिति थी उनकी कि अगर हम उन्हें कह दें ये नहीं होगा तो वो कहेंगे तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास, हम चले अपने घर। तो मैंने उन्हें कहा हाँ, अगले कल्प में शिव बाबा तुम्हारा पाठ बदल सकता है, पर एक काम करना पड़ेगा कि जितनी तपस्या ब्रह्मा बाबा ने की है उससे थोड़ी ज्यादा करो, तो ही तो नंबर आएगा ना। तपस्या बिल्कुल ना करो और कहो मुझे ब्रह्मा बना देना अगले जन्म में, तो ये कैसे संभव होगा? कुछ लोग कहते हैं हमारा पाठ बदल जाए, हम ये प्राप्त कर लें। हम देखते हैं उनको, ज्ञान हम सबको है कि कुछ बदल नहीं सकता। बाबा ने कह दिया मैं भी नहीं बदल सकता। कोई बहुत ही जिद करता है तो मैं भी कह देता हूं ऐसा करो, आज से रोज 8 घंटा योग करो कम से कम 8 साल, तुम्हारा पाठ बदल जाएगा। अब वो करे तो बदले, अब उसका योग ही नहीं लग रहा है, 8 घंटा तो उसकी कल्पनाओं की बात होगी ना। तो बाबा भी इस तरह बच्चों को देखकर, उनकी क्षमता देखकर बातें करते रहे। दोनों ही बातें ठीक हैं, गलती कुछ नहीं है उसमें। कोई कहे बाबा ने कहा ब्रह्मा के को याद करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये क्यों कह दिया? क्योंकि योग का तो अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा, इसके बीच में और कुछ नहीं। मुरली जब बाबा चलाते हैं तो हम जानते हैं कि किसी माध्यम के बिना मुरली नहीं चल सकती, चाहे ब्रह्मा हो चाहे गुलजार दादी हो, बिना किसी माध्यम के तो मुरली नहीं चलेगी ना। तो माध्यम का भी महत्व है, माध्यम ही ना हो तो निराकार बोल नहीं सकता। तो इन चीजों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ब्रह्मा के तन में करें, सूक्ष्म वतन में अव्यक्त ब्रह्मा के तन में करें, या फरिश्ते वो परम धाम में करें, करना है कहीं भी कर लें। हमने आपके सामने ये बातें स्पष्ट रख दी। स्वयं को अशरीरी बनाना और बुद्धि को शिव बाबा के स्वरूप पर स्थिर कर देना, यही परफेक्ट योग है। इस तक पहुंचने के लिए बीच में आपको कुछ भी साधन अपनाने पड़े, उसको अपनाने में कुछ भी हर्जा नहीं है। और आप ये पाएंगे कि इसके अलावा जितने भी योग संसार में आज प्रचलित हैं, सहज योग के नाम से भी योग प्रचलित है, विपश्यना भी है, रेकी को भी लोग योग समझते हैं, महर्षि पतंजलि का राजयोग, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन महेश योगी का हट योग, और चक्रों को जागृत करना, कुंडलिनी जागृत करने का योग, ये सब बहुत सारे जो योग हैं ये राजयोग में सभी समाये हुए हैं। जो आत्मा बनकर परमात्मा से अपने को जोड़ दे, उसको और किसी योग को करने की आवश्यकता नहीं रहती। बाकी सभी योगों में, अगर आप में से किसी ने किया हो, किया है बहुतों ने यहां बैठे होंगे, तो किसी भी योग में मनुष्य आत्मा परमात्मा तक नहीं पहुंची, टच ही नहीं किया बुद्धि ने उसको। केवल मन को शांत करना, चक्रों पर ध्यान करना, इस तक ही सीमित रही थी बातें। अब हम सभी आत्मा समझकर शिव बाबा पर अपने ध्यान को, बुद्धि को एकाग्र करें। सरल शब्दों में कहें, मन बुद्धि दोनों को परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर करना। मेरा है वो, इस मेरेपन को बढ़ाना, इसकी बहुत आवश्यकता है। किसी को योग में बहुत कठिनाई हो, संकल्प बहुत चलते हो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मुरलिया पढ़ो, अच्छे संकल्प अपने मन में रचो, तो श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति हमारे मन को शांत कर देगी। कुछ छोटी छोटी बातें और भी आवश्यक हैं जाननी। कुछ ऐसे भी भाई बहने आते हैं जो कहते हैं योग करते ही सिर दर्द होने लगता है। कि आज तक तो सुना था कि योग से सिर दर्द ठीक होगा, परंतु यहां आते ही तो योग से सिर दर्द हो गया। सूक्ष्म देह के निर्माण में संस्कारों का प्रभाव है या नहीं, अगर है तो क्या? ये सत्य बात है कि सूक्ष्म शरीर के निर्माण में संस्कारों का भी प्रभाव है। जैसे संस्कार, उसके अनुसार सूक्ष्म शरीर के रंग बनते हैं। फरिश्ते का रंग संपूर्ण सफेद, किसी के संस्कार बहुत पाप के हैं, निगेटिव हैं, इम्प्योरिटी के हैं, तो कालापन लिए हुए। जैसे जैसे संस्कार, वैसा वैसा सूक्ष्म शरीर का रंग होगा, उसके साथ ही आत्मा बाहर निकलती है। निरंतर तिलकधारी होने का क्या महत्व है, कौन सी अवस्था है? निरंतर तिलकधारी का अर्थ ही है आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर बैठी रहे, निरंतर ये फीलिंग रहे कि मैं आत्मा यहां बैठी हूं, ये है निरंतर तिलकधारी। तो हम सभी इस बात को और अच्छी तरह समझ लें कि योग अभ्यास में सबसे बड़ी भूमिका है हमारे मस्तिष्क की, ब्रेन की। और ब्रेन हमें गर्भ से ही जो मिला है, उसकी शक्तियां अलग अलग है। हरेक मनुष्य का ब्रेन अलग अलग है। एकाग्रता के लिए ब्रेन की शक्ति बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए। अगर ब्रेन की शक्ति कमजोर है तो एकाग्रता करने से सिर दर्द हो सकता है, टेंशन हो सकती है। किसी को अगर ऐसा होने लगे तो वो थोड़े समय के लिए एकाग्रता छोड़ दे, लंबा समय एकाग्रता न करे। इसलिए मैंने आपकी शुरुआत 5-10 सेकंड से कराई। सिर दर्द हो, भारी हो, तो एकाग्रता की जरूरत नहीं। ऐसी एकाग्रता नहीं जिससे ब्रेन पर स्ट्रेन पड़े, दबाव पड़े, तब आप नशे में रहें, स्वमान में रहें, अशरीरी होने का अभ्यास करें, अच्छे संकल्प रचे, मुरलियां पढ़ लें, तो धीरे धीरे ब्रेन की शक्तियां बढ़ती रहेंगी और एकाग्रता सहज होती जाएगी। ये सब ध्यान रखते हुए सभी को योग करना है। प्रश्न आया है बीज रूप क्या है, मैंने बीज रूप नाम नहीं लिया है, लेकिन वो बात स्पष्ट हो गई। हम अपनी बुद्धि को अगर शिव बाबा के स्वरूप पर स्थिर कर लें, जितनी देर स्थिर कर लें, वही हमारी बीज रूप स्थिति है। इसके कई स्वरूप हो सकते हैं। हम ये अभ्यास करें कि मैं आत्मा इस देह से निकलकर परम धाम में सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे हूं, ये बीज रूप है। हम ये भी अभ्यास कर सकते हैं कि मैं आत्मा इस देह में हूं और सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे हूं, ये भी बीज रूप है। बीज रूप की सिंपल व्याख्या है, जब आत्मा एक संकल्प में स्थित हो जाए, अर्थात हमारे योग अभ्यास में संकल्प समाप्त होते होते एक रह जाए, वो है हमारी बीज रूप स्थिति। इससे हम शक्तिशाली बन जाते हैं, हमारे संकल्प शांत हो जाते हैं। अमृत वेला पावरफुल कैसे हो? सारा दिन अच्छा अभ्यास करेंगे तो अमृत वेला स्वतः ही पावरफुल हो जाएगा। अलग सब्जेक्ट है अमृत वेले का, परंतु फिर भी थोड़े शब्दों में, नींद ना आए अमृत वेले तो अच्छा होगा। इसके लिए मैं सभी को एक राय दिया करता हूं कि या तो उठते ही आप 5 मिनट भी कुछ बाबा के महावाक्य पढ़ लें, 5 मिनट भी, ताकि आपका ब्रेन काम करना प्रारंभ कर दे। दूसरा अभ्यास, आप स्वयं को स्वमान में स्थित करें, नशे में, ताकि और सुस्ती ब्रेन की समाप्त हो जाए, और फिर आप योग की भिन्न भिन्न ड्रिल करें। केवल ये नहीं कि मुझे योग करना है, ये संकल्प काफी नहीं है। आपके सामने रोज सवेरे के लिए कम से कम 5 तरह के अभ्यास होने चाहिए कि मुझे पहले 1-1 मिनट ये 5 स्वरूप अभ्यास में लाने हैं, फिर 2-2 मिनट, फिर 3-3 मिनट। जैसे पिछले वर्ष, पिछले सीजन में बाबा ने 5 स्वरूपों का अभ्यास करने को कहा था, उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। हमने सुना है कि कुछ गुरु, सन्यासी और बड़े महात्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर ऊपर विचरण करते रहते थे, क्या ये सत्य है? ये सत्य है कि सूक्ष्म लोक के नीचे भी, अंतरिक्ष में, जिसको लोग कहते हैं एक सूक्ष्म जगत है, जहां बहुत सारे साधु सन्यासी अपने सूक्ष्म शरीर को धारण कर पहुंच जाते हैं। हमारी इस बारे में बहुत अच्छे अच्छे लोगों से चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सन्यासी और महान पुरुष अब से बहुत पहले, 500 साल से पहले, 300 साल, 1000 साल पहले, ऐसे अच्छे हुए हैं जिनकी एकाग्रता बहुत सुंदर थी, और एक तरह से जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समाधिस्थ कर दिया, उनके कोई पाप कर्म नहीं थे, उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि उन्हें मनुष्य जीवन पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता, ऐसी आत्माएं अंतरिक्ष में सूक्ष्म शरीर धारण कर विचरण करती हैं, मनुष्यों को सहयोग करती हैं। बस वही समय हो गया है, मैं आत्मा शांति का अनुभव कर रहा हूं, या आत्मा शांति स्वरूप है, इसके लिए कौन से रंग का अनुभव करें, हरे रंग का या नीले रंग का, क्योंकि ये दोनों रंग ही शांति के प्रतीक हैं। 84 में अभी जन्म में कमी जन्म मिलता है, भाई हिंदी वाला नहीं है कोई भाई, 84 में क्लियर नहीं है भाई क्वेश्चन, शायद ये पूछना चाहते हैं कि 84 जन्म में अभी कमी है या क्या है। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, बाबा ने ऑन होल जनरल रूप से ये कहा है कि तुम्हारे 84 जन्म होते हैं, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, लेकिन बहुत सारी आत्माओं का यही अंतिम जन्म नहीं है, इसके बाद भी कई जन्म होंगे। इस बारे में मैं एक बात अंतिम आपके सामने रख के समाप्त कर देता हूं। 84 की मुरली आप पढ़ लें, जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, तब बाबा ने एक बहुत अच्छी और गुह्य बात बताई थी। वो बात थी कि विनाश काल में एक विशेष काम होगा, आत्माओं को उनके जन्म जन्म के पापों की सजा मिलने के लिए बार बार मृत्यु, बार बार जन्म होगा, क्योंकि आत्मा को सबसे ज्यादा कष्ट जन्म और मृत्यु के समय ही प्राप्त होता है। तो ऐसा अब होने लगा है, प्राकृतिक प्रकोप होंगे, युद्ध होंगे, गृह युद्ध होंगे, तो 10 साल में ही, बल्कि 7-8 साल में ही, जैसे कई आत्माओं के 5-6 पुनर्जन्म हो जाएंगे, उससे गर्भ में उन आत्माओं को कष्टों के कारण, देह छोड़ने पर जो कष्ट होता है उसके कारण पापों की सजा मिल जाएगी और वो आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। इसलिए ये जनरल रूप से बाबा कहते हैं कि तुम्हारा अंतिम जन्म है, 84वां जन्म है। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी का भी दूसरा जन्म नहीं होगा, दूसरा जन्म तो बहुतों का होगा, और हमारे देखते देखते रोज हो रहा है। आप जानते हैं रोज कितने लोग मरते हैं, कितने जन्म लेते हैं? जनरल 3 लाख जन्म लेते हैं, 2 लाख मरते हैं, कुछ ऐसा है ना। रोज लाखों लोग पुनर्जन्म ले रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म है, क्योंकि केवल इस जन्म में ही तुम बाबा से जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। शरीर छूट गया, फिर वो अवसर समाप्त हो जाएगा, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी क्या करेंगे, बाबा के पास जो कुछ है वो हमारे पास आ जाए। बाबा कहा करते हैं, बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं अपना सब कुछ तुम्हें देकर खाली होकर अपने घर लौट जाऊंगा। खाली करेंगे ना उसको, तो इस अवसर का फायदा उठाकर भगवान को खाली कर दें और जो कुछ उसके पास है वो स्वयं में समा लें। ओम शांति।
Thank you.